जगाने निराकार शिव आया है। परम पिता शिव ने मानव को फिर से आज जगाया है।
जागो जागो आज सवेरा होने को आया है।
शिव सदगति की राह दिखाते सच्ची बात सुनो भाई,
सच्ची बात सुनो भाई।
ज्ञान योग को धारण करके कमल समान बनो भाई, एक साथ मिलकर आओ जग को वैकुंठ बनाना है।
जग को वैकुंठ बनाना है।
अपने कर्मों के द्वारा तुम्हें देव पद पाना है। ये कलयुग सतयुग का संगम आज जगाने आया है। परम पिता शिव ने मानव को फिर से आज जगा।
ओम शांति। बंगाल के एक राज परिवार में कभी एक भव्य महोत्सव का आयोजन था और उस पर्व पर एक नाटक का आयोजन किया गया था और उस नाटक में जो पांच एक छोटे बच्चे का किरदार था जो कि एक कन्या करने वाली थी, परंतु ऐन वक्त पर वो 5 साल की बच्ची बीमार पड़ गई और वो नाटक लगभग ऐसा सोचा गया कि इसे कैंसिल कर दिया जाए, परंतु वहां की जो रानी थी उसने कहा कि नाटक कैंसिल नहीं होना चाहिए, केवल एक बच्ची बीमार है, इसलिए क्यों ना हमारा जो बच्चा है राजकुमार 5 साल का, उसी को कन्या बनाकर उस नाटक में रखा जाए। तो 5 साल का राजकुमार, उसको राजकुमारी बना दिया जाता है और वो नाटक आयोजित होता है। और जब नाटक पूरा होता है तो सबको वो नाटक इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, और रानी इतनी खुश हो जाती है कि वो एक चित्रकार को पुकारती है, बुलाती है और कहती है, मेरा जो राजकुमार है, जो कि अभी राजकुमारी के वस्त्रों में है, उसका एक चित्र निकाला जाए। तो उस राजकुमार का या राजकुमारी का वो चित्रकार बहुत सुंदर चित्र निकालता है, नीचे तारीख लिखता है जिस दिन ये नाटक आयोजित हुआ और ये घटना पूरी हो जाती है। वो राजकुमार बड़ा होता है, युवा हो जाता है और एक दिन राजप्रासाद में घूमते घूमते, राजमहल में घूमते घूमते एक कमरे में पहुंचता है, कमरा खोलता है तो उसे वो चित्र दिखाई देता है और उसमें उसे वो राजकुमारी दिखती है, अर्थात राजकुमार दिखता है चित्र में। और जैसे ही वो राजकुमार उस चित्र को देखता है उसे बहुत आकर्षण होता है उस चित्र का, और नीचे जब वो तारीख पढ़ता है तब उसे लगता है अब ये राजकुमारी भी मेरे ही उम्र की होगी, और उसे उस चित्र की जो राजकुमारी है उससे प्यार हो जाता है। और वो उसे ढूंढने लगता है कहां है, क्योंकि तारीख के अनुसार उसकी और मेरी उम्र समान है। सब जगह ढूंढता है, कहीं नहीं मिलती है वो राजकुमारी अर्थात राजकुमार। और धीरे धीरे उसका प्यार बढ़ते जाता है, यहां ढूंढता वहां ढूंढता कहीं नहीं मिलती वो राजकुमारी, और धीरे धीरे उदास होने लगता है प्यार में, गम में, मोहब्बत में, एकदम से उदास, कहीं नहीं मिल रही है, कहां ढूंढूं उस राजकुमारी को, यहां वहां सब जगह ढूंढता है कहीं नहीं मिलती। उस राज्य के जो मंत्री होते एक बार राजकुमार को देखते हैं, उदास सा है कई दिनों से, राज कारोबार राजपाट कहीं पर भी उसका मन नहीं लग रहा है। वो मंत्री पूछता है क्या बात है, पर ऐसी बातें प्राइवेट बातें ऐसी बताई नहीं जाती है किसी को। वो कहता है कुछ नहीं ऐसे ही। मंत्री कहता है नहीं कुछ तो बात है बताओ, तो वो कहता है मुझे कन्या से प्यार हो गया है। मंत्री पूछता है कौन सी कन्या, वो कहता है नाम नहीं पता। मंत्री पूछता है किस देश की राजकुमारी है, वो कहता है वो भी नहीं पता। कहां रहती है ये भी नहीं पता, फिर प्यार हुआ कैसे, वो कहता है प्यार तो हुआ है और वही चाहिए। तो वो मंत्री को कहता है आओ मेरे साथ, और उसे उस कमरे में ले जाता है और वो चित्र दिखाता है कि ये है वो कन्या। परंतु मंत्री कहता है परंतु ये तो बहुत छोटी है, वो कहता है छोटी नहीं है, नीचे तारीख पढ़ो, अब वो मेरी ही उम्र की है और मुझे यही चाहिए। मंत्री बूढ़ा होता है और जैसे ही उस चित्र को देखता है और तारीख को देखता है, उसे वो पुरानी घटना याद आ जाती है जबकि वो मंत्री भी था, और मंत्री हंसने लगता है और उसको कहता है कि जिसके प्यार में तुम फंसे हो वो तुम ही हो। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम ही हो, जिसके लिए तुम दुखी हो वो तुम ही हो। शास्त्र कहते हैं तत्वमसि धाव आर्ट दैट। और जैसे ही उसे पता चल जाता है कि ये चित्र मेरा ही चित्र है, उसका सारा मोह, उसका सारा प्यार, वो सारा इन्फैचुएशन, वो जो क्षणिक प्रेम था या भ्रम था प्रेम का, एक सेकेंड में समाप्त। अब तक दुखी था उदास था, वो नहीं मिल रही है, पर जिस दिन पता चल गया कि वो दूसरा कोई है ही नहीं, मैं ही हूं, तो वो अपनी निद्रा से जाग उठता है। अब तक जो नींद थी एक भ्रम की, जैसे ही व्यक्ति उससे जागता है तो जो कुछ स्वप्न में देख रहा था, जो कुछ देख रहा था वो स्वप्न था, ये पता चलता है और वास्तविकता की ओर आता है। कहीं हम भी ऐसे ही किसी नींद में तो नहीं सोए, या फिर जिससे प्यार करते हैं और जिसके मोह में फंसे हैं वो कोई एक भ्रम तो नहीं, वो एक निद्रा तो नहीं, एक स्वप्न तो नहीं। शायद कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति सो रहा है। और भगवान जब धरती पर आते हैं तो सबसे पहले एक ही काम करते हैं, वो ज्ञान सुनाने कम जगाने आया है। भगवान किस लिए आता है धरती पर? जगाने के लिए, हमारी निद्रा से हमें जगाता है। तीन प्रकार की नींद है, एक है स्थूल नींद, दूसरी है अज्ञान की नींद जिसमें संसार की आत्माएं सोई है, और तीसरे प्रकार की एक नींद है जिसमें ब्राह्मण आत्माएं सोई है। और वो जो तीसरे प्रकार की नींद है उसकी हम चर्चा आज करेंगे। शुरू शुरू में यज्ञ की स्थापना जब हुई तब कोई गीत नहीं थे, तो फिल्मों के गीत बजते थे, और एक गीत था जाग सजनिया जाग। जो जो फिल्मों के गीत बजते थे उस पर मुरली चलती थी पूरी की पूरी। एक 1964 में कोई एक फिल्म रिलीज हुई थी, मैं चुप रहूंगी, बाबा ने मुरली चलाई, तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, जिसको आना है वो आएगा। माताओं के लिए बाबा ने कहा बस एक ही मंत्र याद रखो, मैं चुप रहूंगी। तो जो जो बाबा को सुनाया जाता था वो मुरली में आता था, और उसके ऊपर पूरी की पूरी मुरली चलती थी। जो जो इर्द गिर्द आसपास जो कुछ होता था वो सारे शब्द मुरली में आ जाते थे। उधर विनोबा भावे, सर्वोदया मूवमेंट, बाबा कहते थे मैं सर्वोदया लीडर हूं। उधर 1930s में एक नया मूवमेंट चालू हुआ, खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान। बाबा ने कहा तुम हो खुदाई खिदमतगार, वो खुदाई खिदमतगार नहीं है, तुम हो खुदाई खिदमतगार। तो जो जो इर्द गिर्द आसपास होता था, इंश्योरेंस मैग्नेट बाबा है, जो जो शब्द न्यूज़पेपर में आते थे और जो जो खबरें आसपास चलती थी वो सब कुछ मुरलियों में आता था, और एक एक मुरली कोई कोई एक एक गीत पर चली है। कितनी ऐसी मुरलियां होगी जो केवल इस लाइन पर है, जाग सजनिया जाग। तो हम आत्माएं जिन्होंने भगवान को जाना है, क्या हम भी किसी नींद में सोए हैं? शायद हाँ। और वो कौन कौन सी नींद है जिससे हमें जागना है? जगे हुए हैं, दोबारा अपने आप को जगाना है। सुबह उठते ही दो काम करने होते हैं, एक तो जागना, और जागने के बाद फिर से अपने आप को जगाना, क्योंकि आत्मा सोई पड़ी है। पहले शरीर जागता है और फिर आत्मा को जगाना है, और आत्मा जगेगी स्वमान से। तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम कहां से हो? जैसे ही राजकुमार को पता चल गया मैं कौन हूं, तत्वमसी, मैं वो हूं, मैं तो वही हूं, उसका सारा मोह, उसका सारा भ्रम, उसकी सारी नींद, उसके सारे स्वप्न, उसका सारा धोखा, दुख, दर्द, सब कुछ एक सेकंड में समाप्त। जैसे ही ज्ञान सूर्य प्रकट होता है, जैसे ही ज्ञान का प्रकाश मन में आता है, वो सारा अंधकार मन के किसी कोने में जो था, बहुत गहराई में जो था, वो नष्ट हो जाता है। तो स्वयं स्वयं को जगाना है। तो वो कौन सी नींद है तीसरे प्रकार की जिससे हमें अपने आप को जगाना है? या फिर वो कौन सी नींद है जिसमें ब्राह्मण सोए पड़े? किसी एक वरिष्ठ बहन ने कभी अपनी सभी छोटी बहनों को एक चित्र दिखाया और बताया, पूछा इस चित्र में क्या है? वो चित्र था जो प्रदर्शनी में है, जो कोर्स की किताब में है, कुंभकर्ण सोया है और ब्रह्मा कुमारी कान में ज्ञान अमृत डाल रही है, और वो इधर से बाहर आ रहा है। तो उस बड़ी बहन ने कहा छोटी बहनों को, इस चित्र में क्या है बताओ विशेष। बहनों ने कहा इसमें तो क्या विशेष है, ये तो रोज हम समझाते हैं सबको कोर्स में, कुंभकर्ण सोया पड़ा है, ब्रह्मा कुमारी ज्ञान डाल रही है और वो निकल रहा है एक कान से सुनकर। उस बहन ने कहा ध्यान से देखो, ये विशेष चित्र है, कुंभकर्ण को बैच लगा हुआ है, वो संसार की आत्मा नहीं है। कौन है वो? स्वयं ब्राह्मणी सोए पड़े है, वो ब्राह्मणों का चित्र है, वो खास बनाया हुआ चित्र था जिसमें कुंभकर्ण को बैच था। तो ज्ञान इधर से सुन रहे हैं और इधर से आउट। सुबह सुबह 7 बजे सेवा केंद्र पर अपनी अपनी डायरी लेकर सभी पहुंचते हैं, मुरली चालू होती है और हम डायरी खोलते हैं, मीठे बच्चे, प्रश्न लिखा, फिर उत्तर लिखा, गीत लिखा, उसके बाद में डायरी बंद और डायरी बाजू में, और फिर मुरली चलती है और फिर डोलना चालू होता है थोड़ा थोड़ा, और डोलते डोलते कहीं और लोक में जाके आते हैं, और फिर एकदम से मीठे मीठे सिकी लदे, फिर जागरण, फिर डायरी ली, धारणा के लिए मुख्य सार 1, 2 वरदान, स्लोगन, उसके बाद में डायरी बंद। और कुछ कुछ माताएं सेंटर पर ही अपनी डायरी छोड़कर जाती है, सीधा कल ही देखेंगे अभी उसको, और फिर सेंटर से बाहर चप्पल पहनते पहनते महावाक्य गायब, घर पर पहुंचते पहुंचते प्रश्न और उत्तर गुम, नाश्ता बनाते बनाते धारणा के लिए मुख्य सार समाप्त, काम करते करते या ऑफिस जाते जाते भाइयों का वरदान उड़ गया, शाम तक स्लोगन खत्म, और जब रात होती है तो सारी मुरली खलास, और फिर कोई पूछता है मुरली कैसी थी तो हम कहते हैं बहुत अच्छी थी, पर क्या थी वो मत पूछना, बस कोई भी पॉइंट बुद्धि में नहीं, ना उसका चिंतन, ये नींद की अवस्था है। जैसे उदाहरण, कोई डॉक्टर आए हैं और वो डायबिटीज का लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है, और हमें डायबिटीज है नहीं, और हम भी जाकर बैठ गए क्लास में, सुन रहे ध्यान नहीं है कुछ, और फिर वहां से चले गए, और कुछ दिन के बाद पता चला कि हमको डायबिटीज हो गई, हमारा शुगर 500 है, अब फिर से लेक्चर है, पर इस बार एक एक पॉइंट ध्यान से सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हमको बीमारी है, पहले नहीं थी तो दूसरों का था, वो दूसरों को नहीं करना चाहिए, ऐसा करो वैसा करो, पर अब हमारे ऊपर आन पड़ी है वो बीमारी, अब मुझे ध्यान से देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है, एक एक चीज एक एक बात। तो जब तक खुद पर नहीं आती, व्यक्ति सोचता है ये ट्रीटमेंट मेरे लिए नहीं है किसी और के लिए, ये परहेज मेरे लिए नहीं है किसी और के लिए, जब ये पता चले दुर्गति हो गई है तब सदगति का मार्ग ढूंढेंगे, जब ये पता चले कि हम भूल गए, ब्राह्मण जीवन में चलते चलते ही विस्मृति के नींद में खो गए, तब सोचेंगे कि अब क्या करना है, कैसे जगाएं अपने आप को। तो जैसे कहा ब्राह्मण भी किसी ना किसी नींद में है, वो कौन कौन सी नींद है, तो ऐसी 10 प्रकार की नींद की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहली नींद है आलस और अलबेलापन। कुछ दिनों पहले मुरली थी संडे की, लास्ट संडे की। दो प्रकार की भाषा बाबा को पसंद नहीं है, एक गेगे और दूसरी के। करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे और क्या, क्यों, कैसे। ये गीत ब्राह्मणों के नहीं है। तो सबसे पहली नींद है आलस की नींद, अलबेलापन की नींद। जब अर्जेंसी होती है कि अभी करना है, हम पर आ गई है, तब व्यक्ति जागता है। जब मुझे खुद ही बीमारी हो गई है और उसी बीमारी पर प्रवचन चालू है, इलाज का की चर्चा हो रही है, हम बहुत ध्यान से सुनते हैं। और जब वो बीमारी मुझे है ही नहीं तो इतना ध्यान से नहीं सुनते। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि शायद हम जिस प्रकार की हमारी दिनचर्या है वो दिनचर्या अलर्ट वाली दिनचर्या नहीं है, एक्यूरेट दिनचर्या नहीं है। वो दिनचर्या आलस की दिनचर्या है, वो अलबेलेपन की दिनचर्या है। सारे दिन भर यदि मुरली की पॉइंट्स बुद्धि में नहीं घूम रही है, अर्थात आलस, अमृत वेला उठ रहे हैं परंतु अमृत वेला नींद में जा रहा है, सुस्ती में जा रहा है, अर्थात आलस है। अमृत वेला उठ तो रहे हैं, बैठ तो रहे हैं परंतु कोई अनुभव नहीं हो रहा है। बाबा ने कहा डेड साइलेंस। हम देखते हैं मधुबन में सुबह सुबह ऐसा पावरफुल वायुमंडल होता है, जैसे सन्नाटा छा जाता है वहां पर, जैसे शरीर है ही नहीं, शरीर नीचे रह जाता है और चेतना पता नहीं किस लोक में चली जाती है। ऐसा शक्तिशाली वायुमंडल होता है वो समय जब ब्राह्मण भी सोए पड़े। अगर उस वायुमंडल का यहां या वहां कहीं पर भी अनुभव करना है तो नींद को जीतना होगा, अर्थात नींद कम कर देना नहीं परंतु कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना होगा। और अतीन्द्रिय सुख इतना सस्ता नहीं है कि सबको मिल जाए। वे शरीर में आत्मा फंसी, शरीर से उसको बाहर निकालना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। तो यदि अमृत वेला अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं हो रहा है तो शायद कोई आलस है। मुरली का सारे दिन भर चिंतन नहीं हो रहा, एक बार सुन ली या पढ़ ली और बाद में हाथ लगाने की भी इच्छा नहीं है उसको, अर्थात जरूर मन में कोई आलस है। सारे दिन भर कोई भी रूहानी ड्रिल नहीं हो रही है, ये भी आलस है। ज्ञान की कोई भी पॉइंट का चिंतन करने की इच्छा नहीं हो रही है, आलस है। तो ये गहरी नींद है, इससे स्वयं को जगाना है। और जगाने की विधि है प्रकाश। एक गुरु अपने शिष्य से कहता है जाओ बाजू के कमरे में मेरी किताब रखी है वो लेके आओ। वो दूसरे कमरे में अंधेरा है, वो जाता है वहां पे, देखता है साफ है, भाग के आता है। गुरु कहते फिर जाओ, पहले बहुत डर जाता है, दूसरी बार लाठी लेकर जाता है और जैसे कमरे में जाता है वो सांप को मारने की कोशिश करता है पर सांप मरता नहीं, फिर आता है। पहली बार भाग गया था, दूसरी बार उसको मारा, गुरु कहता है कि अब दिया लेकर जाओ। वो दिया लेकर जाता है तो देखता है वहां सांप तो है ही नहीं, वो रस्सी है, रज्जू है, सर्प का अनुभूति हो रही थी। तो जो सांप है ही नहीं, तो पहली जो दो विधिया की वो गलत थी। ना तो उस सांप से डरकर भागना है क्योंकि वो है ही नहीं, ना ही उस सांप को मारा जा सकता क्योंकि सांप ही नहीं है। क्या करना होगा? प्रकाश लाना होगा। मन के किसी कोने में जो अंधकार है, या कोई भाव है, या कोई भय है अज्ञात जो डराता है, उसको जीतना है प्रकाश से। उससे भागकर कुछ नहीं होगा, या उसको मारकर भी कुछ नहीं होगा क्योंकि वो है ही नहीं, वो भ्रम है। भय, हर व्यक्ति को कोई ना कोई भय अंदर रहता है, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। जिनको मैं बहुत प्रेम करता हूं, कहीं उनकी मृत्यु हो गई तो, स्वजनों की मृत्यु, स्वजनों की बीमारी, मेरी अपनी बीमारी, भय। मृत्यु भय और रोग भय सबसे बड़े भय है संसार के। और उससे भी बड़ा एक और भय है, वो कौन सा? सबसे बड़ा भय कौन सा है संसार में? एक तो मृत्यु और दूसरा बीमारी, स्वयं की या स्वजनों की। और एक भय है, कौन सा? निर्धन, वो भी है, चलो वो उन दोनों से कम है थोड़ा। मृत्यु वाला भय सबसे ज्यादा है, या अपने अपने जो अपने हैं उनको बीमारी हो गई और पता चल गया ये मरने वाले हैं, कैंसर हो गया है, अब जाने वाले हैं 2 मास में, बहुत पीड़ा। सबसे बड़ा भय कौन सा है? ये 2 संसार के टॉप मोस्ट फियर। और इसके भी ऊपर एक भय है, वो कौन सा? और भी कोई भय है? इसके बारे में धर्मराज, धर्मराज से तो कोई नहीं डरता। जो होगा देख लेंगे, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग उससे भी बड़ा है अज्ञात का भय, फियर ऑफ द अननोन, ये सबसे बड़ा भय है। पता नहीं क्या है परंतु डर रहता है हमेशा, अज्ञात है वो। जिससे भय है वो स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है, धुंधला सा है। फियर ऑफ द अननोन। और व्यक्ति भय में जीता है। किसी भी प्रकार का भय है अर्थात आत्मा सोई पड़ी है, मेरा क्या होगा, अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो कौन सेवा करेगा, मेरे अपने रहेंगे या नहीं रहेंगे, है। तो सबसे पहली नींद है आलस और अलबेलापन। अपने आप को इससे जगाना है कि ये समय कौन सा चल रहा है, मुझे करना क्या है। द टाइम इज नाउ, क्या अब है समय, ये समय हाथ से चला गया फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। बाबा के महावाक्य है, अभी है प्राप्तियों का समय, फिर होगा पश्चाताप का समय। और सबसे ज्यादा पश्चाताप कौन करेगा संसार में? ब्राह्मण आत्मा है। क्यों? क्यों संसार के लोग पश्चाताप करेंगे कि भगवान आया और हमने उसको जाना ही नहीं? और ब्राह्मण पश्चाताप करेंगे, वो आया, उसकी मुरली सुनी, वो चीख चीख कर पुकारने लगा, पर हमने वो नहीं किया। बाप बच्चों से भीख मांगता है, बच्चे पवित्र बनो। बाप बच्चों से भीख मांगते हैं फिर भी पवित्र नहीं बने, फिर भी बार बार ब्रह्मचर्य का उल्लंघन किया, फिर भी बार बार शरीर के भोग में फंसे। संसार में रक्त की नदियां बहेगी, संसार के लोग रोएंगे, परंतु हमारे खून के आंसू होंगे, पश्चाताप के आंसू होंगे, जिन्होंने वो नहीं किया जो भगवान ने कहा। बार 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 समझाने के बाद भी गलतियां करते रहे। किसी एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है इनडायरेक्टली, इसको ब्राह्मण जीवन की रीति रस्म नहीं बना देनी है, इसको ब्राह्मण जीवन का कस्टम रिचुअल परंपरा नहीं बना देना है। किसको? तीन बातों को, 3P। पहला पाप, बार बार पाप करना। दूसरा पी पश्चाताप, पश्चाताप करना, पहले पाप करना फिर पश्चाताप करना। तीसरा पी पार्डन, माफी मांगना, बाबा हमसे भूल हो गई, हमको माफ करना। बार बार बाबा को खत लिख रहे, पहले पाप करना फिर पश्चाताप करना फिर माफी मांगना। 3 P's, पाप पश्चाताप पार्डन, इसको ब्राह्मण जीवन की रीति रस्म नहीं बना के रखना। बाबा रहम का सागर है, इसका मतलब ये नहीं कितनी बार भी पाप करो और वही पाप करो और फिर पश्चाताप करो और फिर लेटर लिखते बैठो तो भगवान माफ कर देगा। वैसे तो इस ड्रामा में माफी होती नहीं, जिसने जो किया है उसको उसका फल मिलेगा जरूर। मुरलियों में आता है बाप को सच सच सुना दो तो आधा माफ हो जाएगा, होता है कि होता है? इस ड्रामा में माफी होती नहीं। हाँ, वो हल्का बना सकता है बाबा को सुना दो तो, बाकी माफी इस समय संसार में होती नहीं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तो तस फल चाखा। ये संसार विश्व कर्म प्रधान, हमारे से ऐसा कोई कर्तव्य ना हो जाए, ऐसा कोई पाप जिसके लिए खून के आंसू बहाने पड़े, पश्चाताप करने पड़े। उर्दू में कहते हैं, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। छोटे छोटे क्षण उनमें गलतियां हो गई और उसका परिणाम कितना बड़ा। संसार भर में जितने जेल है, कारागार, उनमें जाकर देखो तो वहां के जो कैदी है, अगर उनको पूछा जाए क्यों तुमने ये किया, उन्होंने वो कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, वो 10 मिनट के लिए ऐसा आवेग आ गया कि गलती कर दी। और अभी 30 साल की सजा, सारी जवानी जेल में। और वो खराब लोग नहीं, अच्छे लोग हैं वो, बहुत सारे उनमें से, परंतु उस समय क्या हो गया पता नहीं। तो अपने आप को जगाना है। पहली नींद है आलस की। आलस अर्थात ये नहीं कि बस सो रहे, स्थूल नहीं, सूक्ष्म आलस, अलबेलापन, जागरण की कमी, और कभी कभी इसके लिए दंड के विधान होते हैं। जैसे अभी माउंट में प्लास्टिक की बैग, पॉलिथीन पर बैन हो गया है 15 अगस्त से। अगर किसी के साथ भी पॉलिथीन दिखी तो सीधा 500 रुपए जुर्माना। ये चालू बहुत समय से, पर अभी एकदम ऑफिशियल हो गया 15 तारीख से। मधुबन में जितनी यात्रा भोजन में जितनी बैग थी सब चेंज हो गई, सब जगह पर लगा है से नो टू प्लास्टिक, प्लास्टिक फ्री माउंट आबू, कायदे कानून बन गए, तो अब कोई भी नहीं यूज करता। अब तक नहीं थे, अब तक कहते थे मत यूज करो, ठीक है, पर अभी स्ट्रिक्ट हो गए। तो जब कुछ स्ट्रिक्ट हो जाता है तब अपने आप धारणाएं भी होती है, एक दिन ऐसा ही स्ट्रिक्ट यहां हो जाएगा। बाबा ने कहा एक समय आएगा जिसने जो कुछ किया है वो सब कुछ नजर आएगा, कुछ भी छिपा नहीं सकेंगे। एक समय आएगा इस सभा में कोई भी आकर बैठ जाए ऐसा नहीं होगा, कोई भी पतित विकारी इस सभा में नहीं आ पाएगा, आउट, ऐसा आदेश आएगा भगवान से। तब क्या करेंगे? तो सबसे पहला है आलस्य, दूसरा है दूसरी नींद जिसमें ब्राह्मण आत्माएं सोई है वो है बहानेबाजी, एक्सक्यूजेस, प्रिटेक्स। मुरली क्लास क्यों नहीं आए? बारिश ज्यादा हो रही थी। अगर तुम्हारा बेटा विदेश से आ रहा हो और बारिश हो रही हो तो लेने जाएंगे कि नहीं? पता चल गया कि बेटा आ रहा है, सुबह 3 बजे पहुंच रहा है रेलवे स्टेशन, नींद बीन सब छोड़ के जाएंगे उसके पीछे? यहां रोज आता है परम धाम से शिवपुत्र, बहाने, अलग अलग बहाने देना। दादी जानकी ने कभी कहा है, एक है झूठ बोलना, एक है बहानेबाजी। बहाने बनाना ये झूठ बोलने से भी खराब है। एक है झूठ बोलना, एक है बहाने। ये क्यों नहीं किया? ये कारण था, वो कारण था, ऐसा कारण था, वैसा कारण। आर्मी में एक नियम होता है, देयर इज नॉट टू रीजन व्हाई, देयर इज बट टू डू एंड डाई। ये नहीं कहो क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, बस करो और मरो, जिंको की वहां मरू। देयर इज बट टू डू एंड डाई, कोई भी कारण नहीं देना। अमृत वेला क्यों नहीं उठे? रात को बुखार जैसा लग रहा था। कितना बुखार था चेक नहीं किए, थर्मामीटर में नहीं आता है हमारा बुखार, लगता है। और बाबा को रात में ही बोल दिया था 10 बजे, बाबा बुखार जैसा लग रहा है, अमृत वेला हम नहीं उठेंगे। और बाबा को भी पता है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। कभी मुरली में आया था, यदि फ्रैक्चर हो जाए तो स्ट्रेचर पर लेके आओ मुरली के लिए। कोई बहाना नहीं, ये भी एक नींद है। और बहाने बनाना एक आदत है, एक संस्कार है। हर चीज में बहाना, हर चीज में बहाना। जैसे एक व्यक्ति कहीं से गुजर रहा था और वो देखता है आम का बगीचा है और उसको लालच होता है, इतने अच्छे अच्छे आम हैं। वो घुस जाता है उस बगीचे में छुपके से और अपनी झोली निकालता है, उसमें आम तोड़ तोड़ के डालने लगता है। और उसके दोनों हाथों में आम होते हैं, थैली में भी आम। उसी समय उस बगीचे का माली आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। और ये जो व्यक्ति है चोरी करने वाला, तथाकथित धार्मिक व्यक्ति है उस गांव का, वो माली कहता है तुम और ये चोरी? वो कहता है मैं चोरी थोड़ी कर रहा था। फिर वो कहता है हवा इतनी तेज बह रही थी कि हवा की झोंके की वजह से मैं यहां आ गया, इतनी तेज हवा। वो माली कहता है अच्छा ये तो माना हवा, पर वैसे इस इलाके में इतनी तेज हवा कभी बहती नहीं है। चलो मान लिया कि तेज हवा बह रही थी, फिर तुम्हारे दोनों हाथ में जो आम है उसका क्या? वो कहता है हवा इतनी तेज बह रही थी कि मैंने अपने आप को बचाने के लिए दो आम पकड़ लिए, नहीं तो मैं जा रहा था बह के। फिर वो पूछता है चलो ये भी ठीक है, फिर ये थैली में आम कैसे आए? तो वो उसको कहता है अब सारे प्रश्नों का उत्तर क्या मैं ही दूं? अब तुम ये भी पूछोगे कि आम में गुठली कहां से आई? और जो व्यक्ति बहाने बनाता है उसको एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक क्या बोलना पड़ता है? झूठ। और झूठ की नाव क्या हिलेगी डुलेगी? नहीं, सत्य की नाव हिलती डुलती है, झूठ की नाव नहीं हिलती। झूठ की नाव सीधा ही डूबती है एक दिन। तो बहानेबाजी, कोई भी बहाना नहीं। पहले तो ये स्वीकार कर लो आज तक जो कुछ किया वो पुरुषार्थ था ही नहीं, आज से करेंगे। आई विल स्टार्ट नाउ, मैं आज से चालू करूंगा जो कुछ करना है, अब तक जो कुछ हुआ, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, नाउ आई बिगिन अ न्यू जर्नी, नई यात्रा मैं आज से चालू करता हूं। अपने आप को संकल्प देना है, एक नई शुरुआत करनी है पुरुषार्थी जीवन की। तीव्र पुरुषार्थ की बाबा ने परिभाषा दी है कभी, तीव्र पुरुषार्थ अर्थात कौन बताएगा? तीन मुरलियां हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग परिभाषा है पुरुषार्थ की। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात जो गलती एक बार हो गई है वो दोबारा न करना, इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ। दूसरी परिभाषा, इस यज्ञ की सबसे पहली अव्यक्तवाणी 21 जनवरी 1969 हिस्ट्री हॉल, ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद गुलजार दादी के द्वारा चली हुई यज्ञ की सबसे पहली अव्यक्तवाणी। बाबा ने कहा, ज्ञान तुमने बहुत सुना है पर समय पर ज्ञान याद आ जाना ही तीव्र पुरुषार्थ है। तीव्र पुरुषार्थ की दूसरी परिभाषा, समय पर ज्ञान याद आ जाना। और तीसरी एक अव्यक्तवाणी है जिसमें बाबा ने कहा है, तीव्र पुरुषार्थ अर्थात एक सेकंड पहले जो स्थिति है उससे एक सेकंड के बाद आगे हो स्थिति। एक सेकंड की बात की है, चलो एक सेकंड छोड़ो, एक घंटा या एक दिन ले लो या एक मास ले लो, पर बाबा ने सेकंड में बात की है, वो है तीव्र पुरुषार्थ। तो सेकंड है बहानेबाजी, नो एक्सक्यूजेस, कोई कारण नहीं। बाबा ने कहा, कारण को निवारण कर दो, मान लो कि नहीं कर रहे, अभी करेंगे, मार्क्स मिलेंगे, सच्चाई के मार्क्स हैं यहां पर। और जो झूठ बोलते हैं, कोई पेशेंट है और वो कहता है मैं बीमारी नहीं हूं, तो वो कैसे ठीक होगा? होगा क्या ठीक? जो कहता है मैं बीमार हूं ही नहीं, मैं क्यों ट्रीटमेंट करूं, मेरा सब ठीक है। अभी अभी हॉस्पिटल में एक भाई एडमिट हुए थे महाराष्ट्र के, हार्ट अटैक के साथ, और उनकी शुगर चेक की 500। तो उनके युगल को पूछा हमने, ये दवाई नहीं लेते क्या? उन्होंने कहा 6 माह से सारी दवाई छोड़ दी है। क्यों? वो कहते हैं शिव बाबा अब सब कुछ देख लेगा मेरा, सब कुछ बाबा पर छोड़ दिया और हार्ट अटैक के साथ आ गए। कोई अगर कहे मैं बीमारी नहीं हूं, उसको कैसे ठीक करे? एक व्यक्ति सोया है उसको उठाया जा सकता है, पर जो व्यक्ति सोने का ढोंग कर रहा है उसको कैसे उठाएंगे? उठा सकते हैं क्या? सोने का ढोंग कर रहा है। दूसरी नींद है बहानेबाजी की नींद, नो एक्सक्यूजेस। तीसरी नींद है कंफर्ट्स एंड कन्वीनियंसेस, सुख और सुविधा की नींद, साधन और सुविधा के शैया पर मत सो जाना। हे परम तपस्या के पथिको तुम्हें नूतन पथ रचना हो गया, वक्त है कम लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम चलना हो। संसार में ढेर सारे सुख सुविधा के साधन है, परंतु तपस्या अभाव में की जाती है। जहां सब कुछ है वहां तपस्या करना कोई बड़ी बात नहीं, जहां कुछ भी नहीं है वहां तपस्या करना। दादी जान की जब विदेश गई 72 74, 4 साल विदेश रही, कुछ सेवा हुई नहीं खास, वापस आई। जब दादी वापस आई लंदन से, तो जो साड़ी पहनी थी वो वही साड़ी थी जो पहन कर गई थी, और उससे पता चलता था वो 4 साल कितने कष्ट में बीते हैं दादी के। लंदन के उस सेंटर में जो संदली थी वही रात में खटिया बन जाती थी सोने के लिए, और कोई साधन नहीं था सोने का, अभाव में जीवन व्यतीत किया। आज दिखाई दे रहा है दादी के पास सब कुछ है, स्थान भी है, स्थिति भी है, पर वो जो स्थिति और वो जो स्थान प्राप्त किया है यज्ञ में, उसके पीछे लंबी गाथा है तपस्या की। कितना सहन किया है, इस यज्ञ की शुरुआत में 1952 या 4 में उत्तर भारत में हापुड़ नाम की एक जगह है, सुना है हापुड़, कितना भयंकर हंगामा हुआ वहां पर, इतना सताया लोगों ने ब्रह्मा कुमारियों को, गले में सांप डाल दिया वो भाई के, उसको गधे पर बिठा के घुमाया, सेंटर का नल बंद, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी, ताले लगा दिए, बहुत कुछ किया, अपमान किया बहनों का हापुड़ में। हापुड़ का हंगामा बहुत प्रसिद्ध है यज्ञ के इतिहास में, सब कुछ सहन किया। आज हमारे पास बहुत सारे सुख के साधन हैं, पर ऐसा ना हो कि ये सारे साधन तपस्या को ही कम कर दे। आज मोबाइल है, उसमें सब कुछ आ जाता है, क्लासेस आ जाती है, मुरली आ जाती है, सब कुछ, पर एक तरफ ये सबसे बड़ी सेवा का साधन है तो दूसरी तरफ विनाश का भी साधन है। कितने युवक नष्ट हो गए, समाप्त हो गए, एक क्लिक और सीधा ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार। इसलिए जब तक साधन है ठीक, एक दिन कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, टावर खत्म हो जाएगा, केवल यह डब्बा बन जाएगा, तब इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए इसके इतने अधीन नहीं हो जाना है, यह है तो बहुत अच्छा, एक दिन नहीं रहेगा तो भी अच्छा। तो सुख और सुविधा का जीवन, हम तपस्वी आत्माएं, सब कुछ, आज सब कुछ है, कल कुछ भी नहीं रहेगा, आज खटिया है, बाबा ने कहा एक दिन तुमको पत्थर पर सोना पड़ेगा। विदेशियों से मुलाकात, तुम्हारे जो बड़ी बड़ी बैग है उनको ही तकिया बनाना पड़ेगा, एक ऐसा समय है, कुछ भी नहीं दिखेगा रहेगा। तो सुख सुविधा के इतने अधीनस्थ नहीं हो जाना है कि तपस्या ही खो जाए, ये भी एक नींद है। उसके बाद में चौथा, दैहिक आकर्षण, शरीर और शरीर का आकर्षण, शरीर और शरीर के भोग, ये नींद है। इस शरीर को तपाना है, ये शरीर हमको तपस्या के लिए मिला है और सेवा के लिए मिला है, बस दो ही काम है इस शरीर के। अगर इस शरीर को भोग विलास में डुबो के रखा तो वो भोग विलास, हम भोग को नहीं भोगते, भोग हमें भोगता है, हम भी नष्ट हो जाएंगे, और सारा संसार इसी नींद में खोया है, सोया है, डूबा है। अपने आप को तपाना है। संसार में दो मार्ग है, एक है संसार का मार्ग और दूसरा है अध्यात्म का मार्ग। दोनों ही मार्ग में आग है, आग, इधर भी जलना है और इधर भी जलना है। ये मत समझ लेना कि ब्रह्मा कुमार कुमारी में आ गए तो सारे दुख समाप्त। कोर्स में तो ऐसा ही बताया था, इधर आ जाओ, पर बाद में कुछ और पता चला। दो मार्ग है, एक है संसार का मार्ग, उसमें बहुत आग ही आग है, जल जलना है, जलना है, जलना है, पर संसार का जो मार्ग है उसमें जलते 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 व्यक्ति क्या बन जाता है? राख। और अध्यात्म का मार्ग है उसमें भी बहुत जलना है, पर जलते 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 क्या बन जाता है? हीरा। सला कल्प तरुण चे आरव, चेतना चिंता मणिन से गाव। बोलती जे अर्णव पीयूषाचे। वो जलते चलते क्या बन जाता है? कल्प तरुण चे आरव, चिंता मणिन से गाव। फिर वो व्यक्ति जो बोलता है वो पीयूष है, अमृत है। यह अध्यात्म का मार्ग है, पर इसमें भी बहुत जलना है, बहुत सहन करना है, दिन रात सहन करना है। सिक सिक, झुक झुक और मर मर, देह और देह का आकर्षण। क्या है इस शरीर में? तुलसीदास की कहानी है, अपने पत्नी में इतना आसक्त है, इतना आसक्त है, इतना आसक्त है। कपड़े की दुकान है, बार बार अंदर जा जा के पत्नी को देखता है। रत्नावली, इतना आसक्त, इतना आसक्त, एक मिनट उसके बगैर नहीं रह सकता। वो चाहिए बस। और एक दिन पत्नी रूठ कर मायके चली जाती है तो क्या करता है? रात रात को निकलता है, इतनी तूफानी रात में वो नदी को क्रॉस करता है, और किस पे बैठ के? वो मुर्दा होता है उसके ऊपर बैठकर वहां पहुंचता है पत्नी के पास। सोचता है सामने के दरवाजे से जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, घर वाले। रस्सी टंगी होती है, वो सांप होता है, उस सांप को पकड़कर जाता है, ऐसा कामांध। और फिर पत्नी से मिलता है, उसकी पत्नी कहती है, जब उसके वाक्य उसको छू जाते हैं, उसकी पत्नी कहती है, इस शरीर से तुमको जितना प्यार है, मेरे शरीर से तुमको इतना प्यार है, इतना ही प्यार यदि तुम राम से करो तो तुम्हारी मुक्ति हो जाए। बस दिस इज द टर्निंग पॉइंट। ये जैसे ही उसकी पत्नी कहती है बस वो निकल जाता है वहां से, फिर वापस कभी भी लौट के नहीं आता, फिर जीवन ही बदल जाता है। बाद में पत्नी वापस आती है, कहती मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। वो कहता है अब नहीं आऊंगा मैं, अब मैं वापस नहीं आऊंगा। मरो है जोगी मरो, ये मरण है मीठा। देह और देह के आकर्षण, नींद है, एक स्लंबर स्लीप है, इससे बाहर निकलना। उसके बाद में अगली नींद है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्लीप। कौन सी नींद? इलेक्ट्रॉनिक स्लीप, डिजिटल स्लीप। एक कहानी हमको बहुत प्रिय है, शायद सबने सुनी होगी। एक व्यक्ति था, उसको जैसे ही सोता था एक ही स्वप्न देखता था रोज। उसका जो खटिया है बेड, उसके नीचे सांप, बिच्छू, अजगर, रोज रोज एक ही स्वप्न देखता था। और जैसे ही उठता था धड़ 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 धड़, दुख, डर और उदासी, एक ही स्वप्न रोज 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 देखता था। सारा दिन उदासी में कुछ गुजरता था। लोग कहते थे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? वो कहता था सारे डॉक्टर को दिखा कर हो गया, बीमारी ठीक नहीं होती, एक ही स्वप्न रोज दिखता है। और एक अचानक उठता है और बहुत खुशी खुशी से झूमते हुए जा रहा है। उसके गांव वाले पूछते क्या हुआ, क्या वो स्वप्न फिर नहीं आया? वो कहता है इलाज हो गया। कैसे हो गया? वो कहता है मेरा एक दूर का भाई है, वो कारपेंटर है, उसने खटिया के दो पैर ही काट, चार पैर काट दिए और अब स्वप्न आना बंद हो गया। क्योंकि स्वप्न में क्या आता था? खटिया के नीचे सांप, अजगर, पैर काट दिए चारों, अब आना बंद। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, चार पैर है। इन्हीं के नीचे सारे सांप बिच्छू अजगर अच्छा अब ये एक प्रश्न पूछ रहे हैं माताओं में से सीरियल कौन कौन देखता है टीवी पर सही बताना सीरियल सीरियल कोई भी नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता सीरियल एक एपिसोड ऐसी जगह एंड होता है कि आगे क्या होगा उसकी उत्सुकता बिल्कुल क्लाइमैक्स में एंड होता है आगे क्या होगा एक टोटल सीरियल होगा 40 एपिसोड एक एक एपिसोड 40-40 मिनट का या 30 मिनट का कितने घंटे हो गए वो सारे घंटे सफल हुए या व्यर्थ गए दूसरा एक प्रश्न ब्राह्मणों को क्रिकेट मैच देखनी चाहिए कि नहीं हाँ कि नहीं 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 बोल दो बस ऐसे ही एक्साइटमेंट कौन जीतेगा और सोचो वो देखते समय ही शरीर छूट गया तो अंतकाले स्त्री सिमरे किसकी याद में शरीर छोड़कर जाएंगे बाबा की संसार में बहुत सारे मनोरंजन हैं और वो सारे मनोरंजन चीप मनोरंजन है निकृष्ट क्वालिटी के हैं संसार में हजारों कॉमेडी है सीरियल है फिल्में हैं उससे दुख दूर नहीं होता है विस्मृत हो जाता है थोड़ी देर के लिए जैसे व्यक्ति दारू पीता है दारू पीने से क्यों पीता है क्योंकि दुखी है और जब दारू पीता है तो कुछ घंटों के लिए दुख भूल जाता है और फिर आता है दुख वैसा के वैसा ही है उसी तरह संसार के सारे मनोरंजन जाओ थोड़ी देर के लिए भूल जाओ पर जब वापस आओ तो दुख तो वैसा के वैसा ही है संसार के मनोरंजन दुख को मिटाते नहीं है विस्मृत कराते हैं क्षणिक इसके लिए किसी भी चीज से मुक्त होना है तो उसकी व्यर्थता को जानना है उसके सिवा मुक्त नहीं हो सकते नहीं तो दमन होगा वो टीवी मोबाइल इंटरनेट किसी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है इंटरनेट फ्री है या हम इंटरनेट फ्री है या हम और सत्य इतना सस्ता नहीं है कि सोशल मीडिया पर मिल जाए सत्य साधना है इधर से एक और युद्ध चालू है दो व्यक्तियों के बीच एक जमाना था कुरुक्षेत्र पर युद्ध खेला जाता था मैदान में अब सोशल मीडिया पर सारे युद्ध खेले जाते तो डिजिटल स्लीप नींद है एक उसके बाद में अगला है फैशन फैशन की नींद कौन सा फैशन व्हाइट में भी फैशन हम पांडव भवन में कुटिया में बैठते हैं कई बार कुछ कुछ भाई बहने ऐसे एंट्री करते हैं सुबह 3 बजे कि जो पहले से 2-3 भाई बैठे हैं उनको सीधा परमधाम से नीचे गिरते हैं ऐसा सेंट स्ट्रांग सेंट लगाकर अमृत वेला उस सेंट की खुशबू से अभी परमधाम कोई सूक्ष्म वतन से गिरता है कोई पाउडर क्रीम और टैटू और ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी डाय अच्छे तो दिखने चाहिए थोड़े गॉगल स्मार्ट दिखने चाहिए थोड़े और कोई कोई तो वो कौन सी एक शॉल पहनते हैं, इतने बड़े बड़े छेद होते हैं उसमें, किस लिए पहनते पता नहीं वो शॉल। उससे कुछ होता कुछ भी नहीं, ना ठंडी जाती है ना कुछ जाता है, इतना बड़ा तो छेद होता है उसमें। स्टाइल स्टाइल, इस्लाम धर्म में बहनों के लिए ड्रेस के 5 नियम हैं, और टाइट ड्रेस अर्थात जैसे मिलिट्री वाले होते हैं आक्रमण, वो जल्दबाजी को इंडिकेट करता है, कहीं जाना है और यहां तो हम योगी हैं, तो चाहे बहने या भाई दोनों तरफ। पहला नियम टाइट ना हो, दूसरा नियम ट्रांसपेरेंट ना हो, पारदर्शी, इतना पतला, ये दूसरा नियम। तीसरा नियम बहनों के लिए पुरुषों जैसा ना हो, इस्लाम धर्म में तीसरा नियम है ड्रेस कैसा, नॉट लाइक मेल्स, और आज तो सभी ऐसे ही है। एक व्यक्ति सिनेमा हॉल में जाता है और एक सिनेमा देख रहा होता है, बाजू में एक महिला बैठी है, उस महिला को कहता है वो भाई कितना अच्छा एक्टिंग कर रहा है, वो कहती है वो भाई नहीं मेरी बेटी है वो, तो वो कहता है अच्छा तो आप उसके पिता हो, वो कहते पिता नहीं मैं उसकी मम्मी हूं। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, अपने आप को जगाना है नींद से, संकल्प देंगे कि हे आत्मा जाग, हे आत्मा जागो। चौथा नियम चेहरा हाथ और पैर छोड़ के सब कुछ ढका हुआ हो, ड्रेस का नियम बहनों के लिए इस्लाम धर्म में। पांचवा नियम भड़काऊ शब्द कपड़े ना हो, ऐसे कपड़े जो भड़काऊ है, और वर्तमान समय संसार में जो दुष्कर्म और विकर्म है उनका एक कारण है वस्त्र और अंग प्रदर्शन। इसके लिए फैशन की भी एक माया है, फैशन की भी एक नींद है। हमारे कपड़े कैसे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, सिंपल कैसे होने चाहिए, शालीन सादगी वाले कैसे होने चाहिए, स्वच्छ, फटे ना हो, पुराने हो तो चलेंगे पर फटे ना हो। यदि हम भी संसार में जो फैशन कर रहे वही सब करते रहे तो हम में और उनमें क्या अंतर। हमारा श्रृंगार पवित्रता का श्रृंगार, संसार का श्रृंगार नहीं। उसके बाद में अगली नींद है फैमिलैरिटी, फैमिलैरिटी की नींद। आपस में इतने घनिष्ठ संबंध बना के रखे हैं दो व्यक्तियों ने, एक दूजे के बिना जी नहीं सकते, आई मिस यू मैसेजेस भेजते रहते हैं एक दूसरे को। बाबा को कभी भेजा क्या मैसेज आई मिस यू? एक बहुत अच्छा प्रयोग है जो हमने कई मास तक किया, अभी भी करते हैं, व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाना है, उसमें अपने दोस्त का नाम ऐड करना और उसको हटा देना, ग्रुप बन गया जिसमें केवल मैं ही हूं और कोई नहीं, और सारे दिन भर बाबा को अपना इंफॉर्मेशन देते रहना, बाबा अभी मैं यहां हूं, आबा बाबा अभी मैं ये कर रहा हूं, बाबा को मैसेज भेजते रहना दिन भर, जब भी टाइम मिले कुछ ना कुछ भेजो उसको, अभी यहां जा रहा हूं, अभी अभी किसी ने कुछ बोला और अभी रो रहा हूं, वो भी लिख देना, अभी रोने की प्रक्रिया चालू है, दिन भर टाइप करते रहना। शांतिवन में एक बच्चा है, मंद बुद्धि है, थोड़ा सा कमजोर है दिमाग से, बड़ा है पर छोटे बच्चे जैसी हरकतें करता है। उसने कभी सूरज भाई जी की एक क्लास में सुन लिया बाबा को फोन किया करो, तो वो दिन भर बाबा हाँ 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 बाबा मैं आ रहा हूं ठीक है ऐसे बात करते रहता है। दिमाग उसको बहुत कम है, पर वो उसके पास एक फोन, वो फोन भी नहीं है, वो है खिलौना है, उस पे बात करता है हाँ 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 ठीक है ओके ओके आ रहा हूं ऐसे बात करता है, ऐसे लगता है जैसे किसी और से सही में बात कर रहा है। कितना अच्छा अभ्यास है। तो मैसेज करना ही है तो बाबा को दिन भर मैसेज करते रहना। उसमें टाइप कर देना बाबा कॉमा अब तक सब ठीक है, अब तक सब ठीक ठाक चल रहा है, अभी पता नहीं आगे क्या होने वाला है। रात में थैंक्स सबके लिए धन्यवाद, जो कुछ दिन भर हुआ बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट। एक है मनुष्यों के साथ शेयर करना, एक है भगवान के साथ शेयर करना। मनुष्यों से जितना ज्यादा शेयर करेंगे भगवान से शेयर करना कम हो जाएगा। किसी को फोन पर अपनी समस्या सुनाओ एक घंटा, ऐसा हुआ मेरे साथ ऐसा किया, फिर इसने ये किया, फिर उसने वो बोला, फिर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इतना एक घंटा सुनाने के बाद फिर योग करने जाओ बाबा के सामने, वापस सुनाओगे क्या? पहले ही तो सुना दिया, सुनाना कम हो जाएगा। इधर फैमिलियरिटी, किसी भी व्यक्ति के इतने नजदीक नहीं चले जाना कि उसके अभाव में बेचैनी हो। मनोविज्ञान में इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग। पति और पत्नी युगल, चाहे दो बहनें एक साथ रहती है या दो कुमार एक साथ रहते हैं या दो लोग एक साथ रहते हैं, ऑफिस में दो लोग काम करते हैं, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होना चाहिए जिसको कहते हैं साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग। इतना एक दूसरे के पर्सनल लाइफ में इंटरफियर नहीं करना यह समझकर कि मुझे अधिकार है। हर एक व्यक्ति आत्मा है, हर एक के अपने संस्कार है, इंडिपेंडेंट है, किसी पर जबरदस्ती नहीं करनी है, किसी पर कोई बंधन नहीं डालना है, जो जिसको करना है करे। और यहां पर और एक चीज है इससे जुड़ी हुई, यहां पर बहुत सारी माताएं और भाई बैठे हैं, हर एक चाहता है कि हमारी बेटी ब्रह्मा कुमारी बन जाए, हर एक चाहता है कि हमारा जो बेटा है वो एकदम पक्का ब्रह्मा कुमार बन जाए, और उसके ऐसे कोई लक्षण ही नहीं है। हम चाहते हैं कि वो बन जाए। हमको याद है एक भाई, उसका पूरा परिवार ज्ञान में था पर वो नहीं चलता था ज्ञान में, तो उसके परिवार वालों ने हॉस्पिटल लेके आए और उसको वहां पे जॉब दिलाई फार्मेसी में, ताकि ब्राह्मणों के संगठन में रहते रहते रंग लग जाए, ब्रह्मा कुमार बन जाए, मधुबन में रहते रहते। पर वो तो ऐसा महारथी था कभी हॉस्पिटल का मधुबन का भोजन नहीं करता था, बाहर से भोजन लेके आके नॉनवेज खाता था। जबरदस्ती किसी से कुछ नहीं किया जा सकता, जिसको जो करना है वही करेगा, जिसके लिए जबरदस्ती किसी को कुछ बनाने की कोशिश नहीं करना है। हर एक का भाग्य है। हमने देखा छोटे छोटे बच्चे जिनका जन्म मधुबन माउंट अबू में हुआ, जिनका बचपन ओम शांति भवन की स्टेज में गया, दादियों की गोद में जो खेले पले, बचपन में ड्रामा करते थे कितने सारे स्टेज पर ओम शांति भवन के, आज उनमें से कोई भी ज्ञान में नहीं है, कहां से कहां चले गए। इसके लिए किसी पर भी कुछ भी जबरदस्ती नहीं की जा सकती। माताएं कहती है कि हाँ मेरी बेटी का वो है, आप थोड़ा योग करो, सकाश दो, वो ज्ञान में आ जाए। क्यों आएगी, उसको शादी करनी है, करने दो। हरेक के भाग्य में थोड़ी ना है ब्रह्मा कुमारी बनना। फैमिलियरिटी, डिस्टेंस रखना है रिलेशंस में, थोड़ा सा अंतर, डिटैच्ड, तो ही सुखी रहेंगे। नहीं तो एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं, इसने ये करना चाहिए, और जब वो नहीं करता है तो दुख होता है। उसके बाद में अगली नींद है फूड, भोजन। स्वामी विवेकानंद से पूछा था तुम्हारे देश के धर्म का क्या हुआ, उन्होंने कहा था मेरे देश का धर्म चूल्हे और चौके में जाके भस्म हो गया है। जहां पर किचन मंदिर है और भोजन भगवान, पर दिन रात भोजन की ही सोचते रहते, क्या खाऊं और क्या नहीं, ये एक लंबी निद्रा है। एक ही प्रश्न है, अपनी डायरी में नोट करके रखना है, मैं जीने के लिए खा रहा हूं या खाने के लिए जी रहा हूं। छोटा सा प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण है। और योगी अल्पाहारी होता है। योगी का भोजन सूक्ष्म संकल्प है और शरीर भोजन से कम, संकल्पों से ज्यादा चलता है। और सारी बीमारियों का यदि कारण देखा जाए तो कहीं ना कहीं रॉन्ग टाइप ऑफ फूड है व्यक्ति का। उसके बाद में दसवा या नौवा, गॉसिप्स। गॉसिप्स अर्थात माताओं को पता है गॉसिप्स क्या होता है, क्या होता है? झरमोई झगमोई, इसके यहां ऐसा हुआ, तुमने सुना क्या? एक मंदिर का पुजारी होता है, मंदिर में सो रहा होता है, अचानक किसी पक्षी का पंख उसके मुंह में गिरता है, और जब उठता है तो पंख निकलता है। कोई पक्षी उड़ रहा होगा और आ करके सो रहा होता है। घर पे अपनी पत्नी को बताता है कि मैं जब सो रहा था मंदिर में तो ये पंख मुंह में गिरा था। वो पत्नी कहती है अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है, क्योंकि ये पक्षी तो कबूतर का है और कबूतर तो इस इलाके पे है ही नहीं। तो वो पति उससे कहता है ये बात किसी से कहना नहीं, बिल्कुल गुप्त रखना इस बात को, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। पर पत्नी कब तक छिपाएगी, रात भर बेचैन। दूसरे दिन सुबह सुबह जाती है पड़ोसी के घर और उसको बताती है कि मेरे पति जब सो रहे थे तो उनके मुंह से पंख निकला एक। पति ने कहा था गिरा ऊपर से, उसने कहा मुख से निकला, पर यह बात तुम किसी को भी बताना मत। वो जो पड़ोसिन थी दिन भर इंतजार करती रही, शाम को उसका पति आया, उसके पति को उसने कहा एक बात तुमको बतानी है, हमारा जो पुजारी है ना, जब सो रहा था तो पंख का एक गुच्छा मुख से निकला। पहले पंख था, अभी क्या बन गया, पंख का एक पूरा के पूरा गुच्छा उसके मुख से निकला, पर यह बात तुम किसी को भी बताना मत। यह हमारे अपने पड़ोसी है। पति कहते हैं अच्छा ऐसा हुआ, और वो तो शाकाहारी है और पंख, अरे रे रे, अपशगुन। पत्नी पति भी दिन भर रोक के रखता है अपने आप को रात भर, और दूसरे दिन ऑफिस में जाता है और वहां अपने दोस्तों को बताता है हमारा जो पुजारी है ना वो जब सो रहा था तो एक कबूतर पूरा मुख से निकला उसके, और धीरे धीरे बात इतनी फैल जाती है कि बात यहां तक पहुंच जाती है कि हमारा जो पुजारी है उसके मुख से अलग अलग प्रकार के पंछी निकलते हैं, और सारे लोग आते देखने के लिए कि हमको देखना है कैसे निकलते हैं। वो कहता है ऐसा कुछ है ही नहीं, पर लोग थोड़ी मानते। फैल गई बात तो आखिर में पुजारी को गांव छोड़कर ही जाना पड़ता है। क्या है ये? इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, एक की बात दूसरी, न्यूज मेकिंग द राउंड्स। इसको अंग्रेजी में कहते हैं चाइनीज विस्पर, चाइनीज विस्पर्स, ग्रेपवाइन, रूमर्स, अफवाहें, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर। और ये सब अनुमान पर आधारित होते हैं, पता किसी को कुछ भी नहीं है। उधर से एक भाई और एक बहन आ रही है, कहते हैं जरूर कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है, कल भी देखा था इन दोनों को, आज भी देखा, कुछ तो चल रहा है, दाल में काला है कुछ। शक, शक का इलाज है क्या कोई? शक, शक का इलाज शंका, कोई इलाज नहीं है, कितने भी उसको प्रूफ दो, मानता है क्या व्यक्ति? एक पत्नी को शक होता है अपने पति पर कि जरूर कुछ तो चल रहा है, गड़बड़ है कुछ। वो जैसे ही आता है उसका कोट चेक करती है, कहीं कुछ तो नहीं मिल जाए सुराग, कोई बाल। और जब कुछ भी नहीं मिलता तो वो कहती है अच्छा, नाउ यू स्टार्टेड मूविंग विद बाल्ड वुमन। शक की कोई इलाज नहीं है, एक बार मन में घुस गया, जो प्रूफ देना है दो, नहीं मानता व्यक्ति। इसके लिए ये भी एक नींद है, अफवाह। बाबा ने कहा है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करो, हजार बातें निकलेगी पर विश्वास नहीं करना है। और लास्ट नींद है गफलत, गफलत अर्थात भूल, ब्लंडर, मिस्टेक। भूल पर भूल करते जाना, बार बार भूल करते जाना। एक भूल के लिए माफी हो सकती है, दो के लिए हो सकती है, हमेशा नहीं हो सकती। तो ऐसी ये 10 प्रकार की नींद है। पहला बताया आलस और अलबेलापन, दूसरा बताया बहानेबाजी, तीसरा बताया सुख और सुविधाएं, कंफर्ट्स एंड कन्वीनियंसेस, उसके बाद बताया दैहिक आकर्षण, उसके बताया बात डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद फैशन, उसके बाद फैमिलियरिटी, फूड, उसके बाद गॉसिप्स, झरमुई झकमुई, और लास्ट में गफलत। गफलत अर्थात कोई भूल, भूल की नींद है। भूले कर रहे हैं और रियलाइज भी नहीं हो रहा है कि भूल है, रोज श्रीमत को तोड़ रहे हैं और व्यक्ति को पता ही नहीं कि यह श्रीमत है और उसको मैंने तोड़ दिया। अपनी गलती को व्यक्ति बहुत लाइट कर लेता है, मिनिमाइजेशन, छोटा सा है, कुछ नहीं होता इससे। तो जाग सजनिया जाग। अभी हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। उज्जवल भाई वापस थोड़ा एक्सरसाइज कराएंगे। तो जिनको वॉशरूम जाना है जाके आए, और 5-10 मिनट का ब्रेक, उसके बाद में आधे घंटे की एक क्लास होगी सकाश पर, और 6:30 से लेके 7:30 तक सभी ब्रह्मा कुमारी बहनें स्टेज पर आएगी, 1 घंटा शक्तिशाली योग करेंगे। ठीक है, ओम शांति।